अल्लाह उसे टालेगा नहीं, और किसी और की तो ताकत है ही नहीं टालने की। किसी और की ताकत कयामत टालने की तो दूर की बात, अभी जमीन उल्टी घूमने शुरू हो जाए, कौन सी मुझे बताएं ताकत है इस दुनिया की जो इसको सीधी घुमा दे, कौन सी सुपर पावर है जो इसको सीधा कर दे। सिर्फ एक छोटी सी बात है, अभी सूरज तो मगरिब से तुलू होने शुरू हो जाए, वो कौन सी ताकत है दुनिया की, इस कायनात की, अल्लाह के सिवा जो कि इसको रोक सके। कयामत को तो रोकना तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन के आने से पहले जिसने टलना नहीं है, फिर आ गया तो फिर आप ये नहीं कह सकोगे जस्ट गिव मी वन मिनट, आई जस्ट नीड वन मिनट, आई जस्ट नीड वन डे, एक मिनट। जब हम कहते हैं ना किसी को एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड का भी डिले नहीं होगा कि हम एक सेकंड होल्ड कर लें इस दिन को, कि एक सेकंड में मैं क्लिक करके कोई सदका कर दूं, एक सेकंड मुझे बस देना मैं एक सजदा कर दूं, एक सेकंड बस, ओनली वन सेकंड मुझे दो कि मैं एक कलमा पढ़ लूं ला इलाहा इल्लल्लाह। नो, नॉट इवन वन सेकंड। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया उससे पहले मान जा इंसान, क्यों नहीं मानता तूने, तब जाके मानना तो फिर भी क्या मानना हुआ, मानना है तो इससे पहले मान के दिखा, क्योंकि ये इतना बड़ा दिन आने वाला है जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत मुश्किल है, इससे पहले मान जा। कितने लोग हैं जो इस बात के ऊपर लब्बैक कहने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निदा दे रहा है, इस तजीबू ली रब्बी को, मान जा अपने रब की बात। वो कहता मैं नहीं मानना, कल तू मानेगा ना तो अल्लाह नहीं मानेगा, आज वो मानना हुआ है, आज वो तुझे बुला रहा है, कल तू उसको बुलाएगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं जवाब देगा। लेकिन इंसान कितना नादान है, वो मान के ही नहीं देता, कहता मैं नहीं माननी। मान लको मिन मल जाए यौमा इस दिन, सुन लो तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई पनागा नहीं है। अगर उसके गुस्से से और उसके अजाबों से बचना है ना तो दूर ना भागो, फिर वहां जाके छुप जाओ, वहां जाके छुप जाओ, नहीं उसी के पास आओ, पनाह उसी के पास है, उसके सिवा कोई पनागा है ही नहीं। वह मा लकुम मिन नकीर, और ना ही कोई इनकार करना या कोई अजनबियत, कोई छुप नहीं सकेगा कि मैं अजनबी बन जाऊं, मैं कोई मुझे पहचाने ही ना, नहीं उस दिन कोई अजनबी नहीं बन सकेगा। इंसान का तो जुर्म उसकी शक्ल से नजर आ रहा होगा, छुपने की तो कोई जगह नहीं होगी, ना कोई टीला, ना कोई दरख्त, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई गार, ना कोई पहाड़, ना कोई समुंदर, जहां जाके छुप जाए, कोई कोना नहीं होगा छुपने के लिए, और ना ही कोई पनाहगाह है। एक सेकंड के लिए सिर्फ ये बात इमेजिन करें कि अगर अल्लाह ताला ऐलान फरमा दे किसी के लिए कयामत के दिन कि इसके लिए जहन्नुम की आग है, तो वो कौन सा माई का लाल है जो खड़ा होकर कहे कि नहीं जी मैंने नहीं इसको जहन्नुम में जाने देना, मैं इसको बचाऊंगा, वो कौन होगा। कुल कायनात पे आप नजर डाल के देख लें, नबियों से लेके फरिश्तों से लेके तमाम इंसानों से लेके अपने माँ बाप से लेके औलाद से लेके आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक, तमाम इंसानों का सोचे वो कौन सा इंसान या फरिश्ता या जिन होगा जिसकी ये जुर्रत हो के आगे होके खड़ा होके कह दे कि नहीं मैंने नहीं जाने देना इसको। जब ये बात इंसान सोचता है ना तो फिर वो कहता है एक ही पनाहगाह है कि अल्लाह तेरे दामने रहमत से ही चिमट जाऊं, क्योंकि उसके सिवा कोई पनाहगाह है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कौन सा मल जाए, ला मल जा वाला मन जा का इल्ला इलैक, अल्लाह तेरे से तो कोई पनाह की जगह नहीं, मैं भाग के चली जाऊं किधर जाऊं, तेरे पास ही है पनाह, तेरे पास ही है निजात। तो फिर भागना किधर है, उस दिन इंसान कहेगा आईन अल मफर, किधर है जाए फरार, किधर है भागने की जगह, बता दिया गया भागने की जगह कोई नहीं है, किधर भाग के जाओगे, ये बात क्यों नहीं समझ आती, किधर भाग के जाओगे। भागने का फायदा नहीं, उसकी तरफ आ जाओ, उसका फायदा है, ओके, वहां आके कहीं तुम्हें पनाह मिली जाएगी, और कोई जगह इस जमीन में ना आसमान में ऐसी नहीं है जो तुझे पनाह दे दे इंसान, सिर्फ अल्लाह का दामने रहमत है। अरे अगर वो झिड़क भी रहा है, अगर वो अजाब की बात भी कर रहा है, सिर्फ उसके दामने रहमत में ही आओगे तो बच सकोगे, बचाने वाला भी बस वो ही है, वो अपने गजब से तुम्हें बचा ले। अभी अगर ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में कभी होता है ना, मां डांट रही हो तो बच्चा बाप के पास चला जाता है, बाप डांट रहा हो तो मां की टांग से चिमट जाता है, ऐसे नहीं होगा। आप उसी के पास जाना है अगर बचना चाहते हो। इन आरदु, अब ये एक कॉल दी गई है, अब अगली आयत में फाइन आरत, फिर अगर ये फिर भी नहीं मानते, फिर भी मुंह मोड़ते हैं, फिर भी इनको बात समझ ही नहीं आ रही, फमार सल्ला कहा लहिम हफीजा, तो नहीं हमने आपको भेजा इन पर दारोगा बना के, भी इनको इनके ऊपर निगेबान बना के, इनके ऊपर कोई पहरेदार नहीं हमने आपको मुकर्रर किया हुआ कि आप इनको सीधा करके ही आए। ठीक है, फिर अगर ये नहीं मानते, चॉइस देखिए हम सबको दी गई है, नहीं मानना, अभी भी नहीं मानना, ठीक है नहीं मानना, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि तुम्हें बता दे, इसलिए नहीं भेजा कि तुमसे जबरदस्तियां कराए, उसका काम सिर्फ पहुंचा देना है। इन अलैका इल्लल बलाग, आपका काम है नबी सिर्फ और सिर्फ पहुंचा देना, ना माने ये वो फिर अल्लाह ताला इनसे खुद ही निपट लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पहुंचा देना था, हमारे यहां अक्सर ऐसा होता है कि ये समझ लिया जाता है कि जो दीन को पहुंचा रहा है ना उसकी जिम्मेदारी है लोगों का अमल, लोगों से अमल कराना। इसी वजह से बाज दफा लोग ये कहते हैं आप तो इतना पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप इनको, ये तो ये नहीं करती, ये नहीं करती, ऐसे नहीं करती, ये घरों में ऐसे करती हैं, ये बदजुबानियां करती हैं, ये शौहरों को के आगे जुबान दराजियां करती हैं, ये उनको इज्जत नहीं देती, ये उनके सामने कुरान और हदीस के रेफरेंस ला ला के रखती हैं। तो अगर कोई औरत ऐसा करती है तो दीन की बात पहुंचाने वाले की जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती जहां वो पहुंचा देता है, आगे हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है। दीन पहुंचाने वाले से इस बात की पूछ नहीं होगी अल्लाह के हाँ कि उसने जब दीन पहुंचा दिया तो उसके बाद लोगों ने अमल किया कि नहीं किया। लेकिन हम लोग जो है आज के वो ये समझ लेते हैं कि नहीं भाई इसकी जिम्मेदारी है, इस इदारे की जिम्मेदारी है, इदारे को भी बदनाम करते हैं, यहां से सीखने वालों का क्या फायदा, देखो इन्होंने क्या पढ़ाया इनको, ये देखो ये ऐसे है, तो इदारे का क्या कसूर है या उस पढ़ाने वाले का क्या कसूर है। अन्य कोई नहीं समझना चाहता तो फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब इस चीज से फारिग कर दिया तो और कौन मुकल्लफ हो सकता है। अल्लाह ने अपने नबी को फरमा दिया कि आपसे नहीं है इसकी जिम्मेदारी, आप इनके पहरेदार नहीं, इन्हें पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अच्छा अमल किया कि नहीं, मैंने तो तुम्हें इतने अरसे से बताया तुमने ये करना था नहीं, और ना हमें कभी किसी को ताना देने की जरूरत है, इतने अरसे से मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तुमने ये सीखा, तुम्हें ये समझ आई है, तुम्हें ऐसे हुआ क्यों, आपका काम सिर्फ बता देना है, दैट इज इट, आपका जॉब खत्म हो गई इसके बाद। अब लोगों को ताने देना, उनको बातें सुनाना, तुमने अब ऐसे नहीं किया, मैंने तो तुम्हें ये सिखाया, ये आपकी काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समझा गई बात। कभी भी किसी को इस चीज का ताना ना दे क्योंकि आपको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया ही नहीं, जब अल्लाह ने अपने नबी को नहीं बनाया तो मैं और आप कौन होते हैं जिन जो जिम्मेदार ठेकेदार बन के बैठ गए लोगों के, अब डंडा पकड़ के बस घूम रहे हैं, ये अब मैंने सिखा क्या दिया, पढ़ा क्या दिया, अब लोगों की जाने मुसीबत में आ गई, लोग आपसे छुपते फिर रहे, ये पूछना नहीं ऐसे ना कह दे, कोई जरूरत नहीं पूछने की, जिसको खुदा का खौफ नहीं है फिर आपको क्या जरूरत है डंडा लेके खड़े होने की, और उसको डरना चाहिए तो अल्लाह से डरना चाहिए जो उसको देख रहा है हर वक्त, अगर वो अल्लाह से नहीं डरता तो फिर और किसी को क्या ये जायज है कि वो जाके अपना खौफ दिलाए लोगों को। तो कभी भी आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मिले तो उसके बाद खुदा के लिए ठेकेदार ना बन जाए, लोगों को खौफजदा ना करना शुरू हो जाएगा अपने से, कि वो दूर भागे आपसे, या अभी ये मेरी ये चीज पकड़ लेगी, अब उस चीज पे मुझे ताना देगी, अब इस चीज का मुझे कहेगी। आपका काम बता देना है, पहुंचा देना है, यही नबियों की जिम्मेदारी थी, यही आगे उम्मतियों की जिम्मेदारी है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वाइन्ना इज़ा अज़क़ना अल-इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा। इंसान का हाल तो ये है, जब हम चखाते हैं इसको अपनी तरफ से कोई रहमत, खुश हो जाता है उसे। खुश होने का मतलब यहाँ पे आम खुश होना नहीं है, बल्कि इतराता है, फखर करता है, बड़ी डींगे मारना शुरू हो जाता है, जी मैं तो ये चीज, मैंने तो जी फलां जगह इन्वेस्टमेंट की, मैंने तो ऐसे किया, मेरी तो ये चीज। अपनी इल्म, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों पर बड़े मान करता है, बड़ा गरूर उसके अंदर आ जाता है, वो समझता है कि बस मेरा करने से ही सारा कुछ हुआ है ना। तो जब फरमाया अज़क ना, हम चखाते हैं, किसने चखाया? तुम्हें कुछ तुम्हारे अपने इल्म से नहीं मिल गया, तुम्हारी अपनी प्लानिंग, और मैंने ये इन्वेस्टमेंट की, मैंने ऐसे किया जी, मैंने ये बेचा और वो खरीदा, बस जी मेरा जो फैसला था ऐसा हो गया, वो तुम्हारे से क्या। अज़क नल इंसान, हम चखाते इंसान को, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन कोई रहमत, रहमत से मतलब यहाँ पे क्या है, दुनिया की कई चीजें आसाइशी हैं, माल दौलत है, औलाद है, सेहत है, जो भी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से नेमते मिली हुई है, वो सब अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन इंसान भूला नहीं समाता उसके ऊपर, अकड़ता नहीं हटता उसके ऊपर। होना तो क्या चाहिए था कि इन नेमतों को, ठीक है अल्लाह ने दिया, उठा के फेंक नहीं देनी कि ये बहुत बुरी है, मुझे ये नेमत मिल गई, मुझे घर मिल गया, मैं तो बिल्कुल इससे मुझे बहुत बेजारी होती है, मुझे घर मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बहुत बुरी लगती है, ये दुनियावी चीजें हैं जी, मेरा तो इससे कोई काम नहीं। ऐसी भी कोई तकवा नहीं है, ये कोई तकवा नहीं है। सुन लें वो जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बातें नहीं कि मैं अपनी नेकी बताने के लिए वो करूं, हकीर समझूं अल्लाह की दीवी नियमतों को। मोमिन का मामला क्या होता है, जब अल्लाह उसके ऊपर कोई रहमत करता है, कोई उसको नेमत अता फरमाता है, कोई खुशी उसके पास आती है, तो हदीस में क्या है, मोमिन का मामला भी अजीब है, ये हदीस याद रखे, जब उसको कोई खैर पहुंचती है तो क्या करता है, शुक्र अदा करता है। तो जब नेमत मिले, आजी आ जानी चाहिए, शुक्र गुजारी आ जानी चाहिए, नेमत को उतार उतार के ना फेंके, मुझे क्यों मिल गई, मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, मैं तो बड़ी अल्लाह वाली हूँ, अल्लाह ने तुम पे रहमत की, उसको लो और शुक्र अदा करो अल्लाह के आगे और झुक जाओ, नंबर वन ये बात। नंबर टू, उसको इस्तेमाल करो, और ऐसे इस्तेमाल करो कि ये सोच के कि ये मेरा हक नहीं था, अल्लाह तूने अता कर दिया, तेरा करम है, तेरा एहसान है मेरे ऊपर। ये होता है जब आपको कोई खैर मिले, नेमत मिले, खुशी मिले, कामयाबी मिले, तो ये रवैया होना चाहिए। इसका रवैया क्या है, इतराने का, फूलने का, आपे से ही बाहर हो जाना जी। तो शादी क्या हो रही है, आपे से बाहर हो गए, वो ग्रेजुएट क्या कर गए, आपे से ही बाहर हो रहे हैं पार्टियों में, वो बड़ी प्रमोशन क्या मिल गई, दिमाग ही खराब हो गया। ये चीजें नहीं, आप देखते ना कुछ लोगों के पास वो नया नया पैसा आता है, उनको अकड़ जाती है गर्दन भी, और बस किसी की तरफ देखते भी नहीं है, किसी का बच्चा किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया या बड़ी जगह उसको एडमिशन मिल गया, उसके बाद किसी से सलाम ही नहीं करते, वो सोचते हम वो बड़ी चीज बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो, ये एक ये रवैया, और मैंने दूसरा भी आपको बता दिया ना, उसको भी मिली रहमत, लेकिन उसने क्या किया, उसकी आजी बढ़ गई, उसने कहा अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह तूने मुझे अता फरमा दिया, तेरा शुक्र है अल्लाह, वो और झुक जाते हैं। और अब दूसरा देखिए, इंसान के ऊपर दो ही हाल होते ना, या तो वो रहमतों में होता है, या फिर उसके ऊपर कोई मुश्किल आई होती है। अब क्या अगर मुश्किल आ जाती है, वह इन तो सिबुम सैया, तुम अगर पहुंच दिया कोई तकलीफ, बिमा कदम अतई दी है, वो भी अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म नहीं, अपने ही हाथों की कमाई है, अपने ही करतूत है, अपने ही कोई गुनाह है जो आगे आ गए, कि क्या हो गया, कोई माली नुकसान हो गया बहुत बड़ा, कोई बीमारी आ गई, कोई किसी की मौत वाकई हो गई, किसी रिश्ते से महरूमी हो गई, इक्तदार छिन गया, इज्जत से महरूमी हो गई, तो क्या करता है ये इंसान। अब वो वाली हदीस याद करें, मोमिन क्या करता है, उसको जब कोई शर पहुंचता तो क्या करता है, सबर करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मामला दोनों तरह ही अच्छा है, वो दोनों तरह ही फायदे में है, उसमें भी फायदे में उसमें भी फायदे में रह गया। लेकिन ये क्या करता है, फाइनल इंसान कफूर, तो बेशक वो नाशुक्रिया करने लगता है। कैसे नाशुक्री करता है, जजा फजा करता है, चीखो पुकार करता है, अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देता है, कहता मैं तो मेरे से ज्यादा को मजलूम ही नहीं, ऐसे करता है जैसे कभी इसने कोई अच्छा वक्त देखा ही नहीं, कभी अल्लाह ने इसके ऊपर कोई नेमत की ही नहीं, कभी इसके ऊपर अच्छे दिन आए ही नहीं थे। यानी अब देख ले दोनों रवैये देख लेना, पहले नेमत थी तो तब भी कोई शुक्र गुजारी नहीं है, उल्टा इतराना है, जब कोई गम आया तब भी कोई सबर नहीं है, उल्टा चीहो पुकार है, गिले शिकवे हैं, हाय अल्लाह ने हमें ही देख लिया, हाय हमारे पर ही मुसीबत आ गई, हमने ऐसा क्या कर दिया था, हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था। यानी उस वक्त भी जजा फजा, हालांकि मुसीबत आई तो अपने गुनाहों की वजह से ही आई, फिर भी नाशुक्री अल्लाह की कारण है, और फिर भी अल्लाह के आगे और नहीं झुक रहे और उल्टा अल्लाह से गिले शिकवे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक ईमान वाले के रवैये में और इस शख्स के रवैये में हम किससे ज्यादा करीम है, हमारे पर कोई तो हाल होगा ना, हम किस वाले से हमारा रवैया क्लोजर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्द, लिए अल्लाह ही के बादशाह आसमानों की और जमीन की, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी कुदरत दिखाई है, अल्लाह ही के लिए है सारी बादशाहत, यानी मालिक भी वही है, खालिक भी वही है, कंट्रोल भी उसी का है। किसके ऊपर, जो आसमान है और जमीन है और जो भी इनमें है, सब के ऊपर, जिसको चाहे दे, जिससे चाहे ले ले, जिसकी चाहे मदद करे, जिसकी चाहे ना मदद करे, जिसके लिए चाहे खजानों के मुंह खोल दे, जिससे चाहे खजाने वापस ले ले, सब कुछ उसका है। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक ऐसी कुदरत दिखाई है, उसका इजहार यहाँ पे फरमाया, उसका जिक्र यहाँ पे फरमाया है कि जो किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई बड़े से बड़ा बादशाह, कोई बड़े से बड़ा आदमी नहीं कह सकता कि मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी बेनियाजी और उसकी शहनशाहियत, आप देखे यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो वो चाहता है और जैसा वो चाहता है वैसा पैदा करता है, जो वो चाहता है में क्या आया, यहबुली मई यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है, लड़कियां मतलब बेटियां, औलाद की बात हो रही है, वह यहबुली मई यशाउ दुकूर, और जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है, ना किसी के पास बेटियां आ जाना उसकी नहुसत की बात है, ये बेटियां पैदा किए जा रही, बेटियां पैदा किए जा रही, ये तो मनहूस हो गई है, या इसकी क्या वैल्यू है, इस ये कैसी है, जिस बस इसके तो बेटियां ही हो रही हैं, इसका कसूर है, कसूर किसका है बताएं, कसूर किसका है इस आयत में देख के, ली मई अशा, किसकी तरफ बात हो रही है, अल्लाह की, हम कहते हैं कसूर किसका, औरत का, हमने इसका मतलब ब्लेम दिया अल्लाह को कि वो तो लड़कियां ही पैदा किए जा रहा, उसने लड़कियां ही देता जा रहा, ये फैसला तो अल्लाह का था, मैया शाह जिसके लिए वो चाहता है, वो चाहता है, औरत नहीं जिसके लिए चाहती, माँ बाप खुद बेबस है, जिसके लिए वो चाहता है बेटे देता जाता है, तो वो उस औरत का क्या कमाल, मैं तो बेटे ही होते जा रहे, मैं तो बेटे ही होते जा रहे, तो इसके ऊपर बहुत कोई फखर की बात है, इसके अंदर कोई फखर की बात नहीं आपकी, कि आपको बहुत बड़ी चीज है, यहाँ अल्लाह आपसे बड़ा राजी है जो आपको बेटे दिए जा रहा, नहीं लीमा ही अशा जिसके लिए वो चाहता है, जैसे माल वो तकसीम करता है जिसके लिए चाहता है ज्यादा दे या कम दे, इसी तरह औलाद भी है, बेटियां भी इम्तिहान है, कैसे उनकी तरबियत करते हो, कैसे उनको पालते हो, उनको हकीर तो नहीं देखते हो, क्या उनको जन्नत के लिए अपना सामान देखते हो कि ये मुझे जन्नत में ले जाने वाली होंगी, इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है इनकी तरबियत करने पे, लड़कों की तरबियत करने पे नहीं बशारत है, लड़कियों की तरबियत करने पे बशारत है, उनको पालने पे, परवरिश करने पे, उनके फर्ज अदा करने पे, लड़कों के ऊपर हमें खुशी होती है बहुत ज्यादा, वो जिसको चाहता है लड़के देता है, अब इसके अंदर भी क्या फखर की बात है, अब वो ये भी इम्तिहान है, कौन है जो फखर में पड़ जाता है, और लड़के की माँ बन के आपके पैर नहीं जमीन पे टिकते, तो ये मैं लड़के की माँ, हम लड़के वाले हैं, ये रवैये हमारी शादियों पे देखे जाए तो पता चलते हैं कि क्या रवैये होते हैं। वो लड़के वाले ना हो गए पत्नी, जैसे बहुत बड़ी दुनिया की कामयाबी या कुंजियां हमारे हाथ में आ गई, बादशाहत कौन सी हमने ले ली, जिसको चाहता है वो लड़के देता है, आपका क्या कमाल है, ये तो उसकी अमानते हैं, उसने दिया वो वापस ले सकता है, और उसने उसकी मर्जी से बेटा हुआ है, आपकी तो नहीं मर्जी से हुआ, तो फिर आपका ना आपसे पूछा गया, ना आपने कोई बताया, ना आपकी कोई मर्जी जानी गई, फिर आपका क्या इसके अंदर के भाई मैं बहुत फखर करूं मैं बेटे की माँ हूं, ये कौन सी बड़ी कामयाबी है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, और जिसको चाहता है मिला जुला के दे देता है, लड़के भी और लड़कियां भी, बेटियां भी बेटे भी। वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, और वो जिसको चाहता है बांझ कर देता है, उसकी औलाद नहीं होती। इसमें भी कसूरवार औरत को करार दिया जाता है, ये जी बांझ है, इसकी औलाद नहीं कोई, चाहे मर्द में ही कसूर क्यों ना हो औरत के ऊपर डाल दिया जाता है, यानी उसके अंदर कोई मसला क्यों ना हो, कसूर तो नहीं किसी का भी, लेकिन मर्द के अंदर चाहे कोई वो हो फिर भी औरत के ऊपर डाला जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो सारे के सारा इसके अंदर भी फैसला किसका है, टोटल फैसला अल्लाह का है, टोटल अल्लाह का है, मई यशा यखलुकु मा यशा, जो वो चाहता है चाहे तो दे किसी को, चाहे तो ना दे, अब फिर होना क्या चाहिए, अल्लाह के फैसलों पे राजी होना चाहिए, ना कि हर वक्त इसी गम के अंदर गूले रहेंगे, हाय ऐसे क्यों हो गया वो क्यों गया। आप देखते हैं कई मियां बीवी दोनों ही सेहतमंद होते हैं फिर भी नहीं होता औलाद, क्या वजह है, बस अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन ये हम इस चीज पे राजी हो जाएं कि अल्लाह की मर्जी है, ये हमें कहां पसंद है। हम कहते तो है सुबह शाम की दुआओं में रदीतु बिल्लाहि रब्बन, तीन दफा पढ़ते हैं हम, है ना, ये दुआ है ना रदीतु बिल्लाहि रब्बन वाली, उसमें पहला हिस्सा क्या कहता है, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, राजी है क्या, रब होने पे राजी होने का मतलब है कि उसके हर फैसले पे भी मैं राजी, लेकिन क्या हम राजी होते हैं, यह सारी जिंदगी एक कसक रहती है, हाय बस ये नेमत नहीं मिली, ये नेमत नहीं मिली, वो बेशुमार जो तुम्हारे पास नेमत है वो तुमने आज तक गिनी नहीं, एक अल्लाह ने महरूमी अगर दी है तो उसके ऊपर ही बैठ गए, उसका भी इम्तिहान है जिसके पास नहीं औलाद हुई, और उसका भी इम्तिहान है जिसके पास औलाद है, बड़ा इम्तिहान किसका है, आप क्या सोचते हैं। जी हाँ, बड़ा इम्तिहान उसका है जिसके पास औलाद है, उसका इम्तिहान छोटा है जिसके पास नहीं है, उसकी पूछ कम है, उसका एक पेपर कम है। आप हमें कहते हैं आप टेस्ट छोटा बनाया करें, हाँ छोटा बनाया करें, सबको छोटा टेस्ट अच्छा लगता है, लंबा टेस्ट दे दिया जाए वो नहीं किसी को अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे दुनिया में कहते हैं इम्तिहान के पर्चे और ज्यादा हूँ और ज्यादा हूँ और ज्यादा हूँ, हालांकि ये इम्तिहान वो है जिसकी चेकिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करनी है, और जिसके मार्क्स की बेस पे हमारी हमेशा की जिंदगी बेस्ड है। तो वो तो जिनके पास नहीं उनका तो पर्चा एक कम है, अब वो अल्लाह की रजा पे राजी हैं या नहीं ये उनका इम्तिहान है बस। इसमें ये नहीं कि अपना इलाज नहीं कराना चाहिए या कुछ है, नहीं इलाज करा सकते मगर ऐसा इलाज ना कराए कि इंसान की सेहत चली जाए, ऐसा इलाज ना कराएं कि इंसान अपने ईमान ही खो दे, क्योंकि बार दफा ऐसे ऐसे भी इलाज होते हैं जब पीरों फकीरों के जाते हैं कि भाई अपने ईमान ही चले जाते हैं। इन्नहु आलीमुन कदीर, बेशक वो इल्म वाला है और कुदरत वाला है। कितनी रेलिवेंट अल्लाह ताला की दो सिफात इस आयत के बाद आई है, समझ आ रही है आपको, ये बात समझ आ रही है, वो अलीम भी है और कदीर भी है। अलीम क्या है, यहाँ पे क्यों आई अलीम, इसलिए वो जानता है किसको क्या देना, किसके लिए बेटियां देनी है वो उसके लिए सही है, किसको बेटे देने सही है, किसका किस तरह से इम्तिहान करना है, किसी को ना देख के उसको आजमाना, वो जानता है सब। और कदीर वो कुदरत रखता है, ऐसे नहीं कि आज कोटा था बेटों का तो वो खत्म हो गया अब तो अब इनको बेटियां ही चलो पकड़ा दो, दुनिया में तो ऐसे होता ना कोई चीज खत्म हो जाती है चलो अब आप वो सोडा नहीं है तो चलो पानी की बोतल आप पकड़ लें, जूस नहीं है तो चलो ये चाय ले ले आप, ये ऐसा नहीं है, वो कुदरत रखता है, वो चाहे सबको ही बेटियां और बेटे दे दे, सबको ही औलाद एक जैसी दे दे, सबके एक जैसे एक जितने बच्चे हो, नहीं उसकी मर्जी, वो कुदरत रखने के बावजूद उसको इल्म है ना, वो अपने इल्म की बेसिस के ऊपर वो जानता है किसको क्या देना, और ये ना समझो कि उसके पास कुदरत नहीं, उसके पास कुदरत है,